ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम में से स्कंध है 7 अध्याय 15 और अध्याय का शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, श्लोक संख्या 15। सॉरी एक्सक्यूज मी 75 यस अध्याय 15 एंड श्लोक संख्या 75। यूयम नृलोके बत भूरि भागम् लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति ये शाम गहना वसतीति साक्षात् गुणं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ यूयम तुम सभी पांडव नृलोके इस जगत में बत निस्संदेह भूरि भागः अत्यंत भाग्यशाली लोकम ब्रह्मांड के सारे लोक पुनानः शुद्ध कर सकते हो मुनयः बड़े बड़े साधु पुरुष अभियंति सामान्य पुरुष की भांति देखने आते हैं येषां जिसके गृहान पानों के घर को आवसती रहता है इति इस प्रकार साक्षात प्रत्यक्ष गुणम अत्यंत गोपनीय परम दिव्य ब्रह्म परब्रह्म कृष्ण मनुष्यलिंगम मानो सामान्य व्यक्ति हों। अथवा हे महाराज युधिष्ठिर तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेकानेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तात्पर्य ये वैष्णव की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कथन है। मानव समाज में ब्राह्मण ही सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। ब्राह्मण वह है जो निर्विशेष ब्रह्म को समझ सके, लेकिन शायद ही कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ पाता हो जिन्हें भगवद्गीता में अर्जुन द्वारा पर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण भले ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाए, किंतु पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे। भूरि भागा शब्द बताता है कि पांडवगण ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणों से भी उच्चतर पद पर थे। अगले श्लोक में नारद मुनि पांडवों के पद की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् हरे कृष्णा। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेकानेक संतजन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तो यहां पर नारद मुनि जो कि एक ब्रह्मचारी हैं और वो पांडवों की यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं, तो नारद मुनि प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं वो गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं। यहां पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है यहां पर कि ब्रह्मचारियों को गृहस्थों की प्रशंसा करनी चाहिए और गृहस्थों को भी चाहिए कि ब्रह्मचारियों की थोड़ी प्रशंसा करते हैं, हमें एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए एक्चुअली। तो ऐसा जो भी ब्रह्मचारी है जो कि क्रिटिसाइज करता है गृहस्थों को कि अरे वो तो सेंस एंजॉयमेंट में धंधा करते हैं, ठीक है, पैसे कमाते हैं, बाहर कितनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कभी कभी आए थे मंदिर, बड़े भक्त बनते हैं अपने आप को, हमने सब कुछ त्यागा है, हमने सब कुछ त्यागा है। एक दिन अपना ब्रह्मचारी भी त्यागे लेंगे, पक्की बात है। जिसको अपने त्याग का इतना घमंड है एक दिन ब्रह्मचारी भी त्यागेगा वो। सो दो सच सुपर ब्रह्मचारी बिकम सुपर सेंस एंजॉयर्स। तो इस तरह के सुपर ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सुपर सेंस एंजॉयर्स बनते हैं जो गृहस्थों को क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनको वैष्णव नहीं देख पाते बल्कि उनको आश्रम से आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसे गृहस्थ भी जो कि ब्रह्मचारियों को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी गृहस्थ नहीं रह पाते, वो गृहवेदी बन जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचारियों को भी चाहिए कि हमेशा जो है हमेशा उनका सम्मान करें। गृहस्थों की बाहर कार्य करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, उसके बाद साधना भी कर रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहे हैं और प्रीचिंग मिशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करंटली अगर हम ओवरऑल स्कोर में देखें 80% प्रीचिंग इज डन बाय द गृहस्थस। गृहस्थ बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो। सो दैट इज वी सी दैट गृहस्थस दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी सिग्निफिकेंटली। तो यहां पर हम देखें कि जो नारद मुनि ही इज ग्लोरीफाइंग द गृहस्थस। और कभी कभी ऑफकोर्स हम गृहस्थों में व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग तो हम माताओं को भी क्रिटिसाइज करते हैं, स्त्रियों को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं अक्सर, जो कि नहीं जानते कि कोई जो भक्त है चाहे किसी भी शरीर में हो किसी भी आश्रम में हो। सो देयर इज क्रिटिसिज्म। तो एक बार श्री प्रभुपाद कलकत्ता में थे एंड देयर वाज वन पर्सन, देयर वाज वन मायावादी, और इसको पता लगा कि प्रभुपाद जी कलकत्ता में आए हुए हैं। तो उनके साथ मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद चल रहे हैं साथ में, ये मायावादी भी चल रहे हैं। अब उसने देखा कि ना प्रभुपाद जी तो सन्यासी है, मैं भी सन्यासी हूं। सन्यासी मीन्स अ वन हु क्रिटिसाइजेस वुमन, स्त्रियों की बहुत क्रिटिसाइज कर रहे। ही वाज क्रिटिसाइजिंग वुमन इज अ गेटवे टू हेल, वुमन इज अ वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ इल्यूजन, वुमन इज दैट वुमन। प्रभुपाद जी पूरी मॉर्निंग वॉक में शांत रहे, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। एंड दिस पर्सन वाज मायावादी सन्यासी वाज स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। फिर प्रभुपाद जी मंदिर पहुंचे तो प्रभुपाद जी के साथ मंदिर में ये मायावादी पहुंचा। और फिर जब प्रभुपाद जी मंदिर पहुंचे तो प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए यमुना माता जी आएंगे, तो यमुना माता जी साथ में थी और यमुना माता जी साथ कुछ और माता जी थी, कुछ प्रभु भी थे, और उनके हाथ में फ्लावर गार्लैंड था ताकि प्रभुपाद जी को वेलकम कर सके। एंड दे हैड सम फ्लावर पेटल्स आल्सो कि प्रभुपाद जी के चरणों में डाल सके प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए। कुछों के हाथों में फूल थे कि प्रभुपाद जी को फूल देंगे, फ्लावर देंगे। तो इस तरह से सब आए थे, तो सबसे आगे यमुना माता जी थी प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए। तो इस तरफ ये मायावादी सन्यासी खड़ा है और इस तरफ यमुना माता जी और बीच में प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने फाइनली अपना मुंह खोला, प्रभुपाद जी ने बोला इस मायावादी सन्यासी को, तो प्रभुपाद जी ने कहा डू नो बाय एसोसिएटिंग विद दीज वुमन योर सन्यास कैन अटेन परफेक्शन, योर सन्यास कैन बिकम परफेक्ट बाय टेकिंग मर्सी ऑफ दीज वुमन, दे आर सो स्पेशल। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है उन्होंने खुद अपने उदाहरण से भी सिखाया है। बीच में एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई आई थी कि ना लेडीज का 32 आउंस ब्रेन होता है और मेन का 64 आउंस ब्रेन होता है। तो एक माता जी थी जो प्रभुपाद जी की शिष्या थी, प्रभुपाद जी से पूछा कर रहे प्रभुपाद जी हम लोगों में 32 आउंस ब्रेन है और जो जेंट्स हैं उनमें 64 आउंस ब्रेन है। प्रभुपाद जी ने कहा ऑल माय फीमेल डिसाइपल्स दे हैव मोर देन 64 आउंस ब्रेन। एक लेटर प्रभुपाद लिखा है आई सी द लेडीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर इंटेलिजेंट देन मेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। देयर इज वन लेटर बाय टू ललिता माता जी समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने जो है हमेशा सबको एनकरेज किया है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो चाहे वो किसी भी शरीर में हो, प्रभुपाद जी ने हमेशा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे दिखाया। तो यहां पर भी जो नारद मुनि की जो दृष्टि है वो यही है जो यहां पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें वैष्णवों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। और यहां पर इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है कि ऐसे संत जन, ऐसे संत लोग जो कि ब्रह्मांडों में अन्य स्थानों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे संत लोग आते हैं इनके घर में पांडवों के यहां पर विजिट करने के लिए जैसे आम व्यक्ति हो। यानी कि यहां पर पवित्र करने के लिए नहीं आ रहे, यहां पर पवित्र होने के लिए आ रहे हैं। ये पांडवों का उच्च स्थान है वास्तव में कि यहां पवित्र होने के लिए आ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जो है वास्तव में इतना उच्च कोटि का भक्त कैसे बनता है? क्या चीज है जो किसी को बड़ा उच्च कोटि का भक्त बनाती है? सोशल स्टेटस, कोई व्यक्ति बोल सकता है सोशल स्टेटस, किसी का सोशल स्टेटस बड़ा अच्छा है तो इसीलिए हम उसको बहुत ही विशिष्ट मानेंगे। पर चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग हों तो उनमें जो खूबसूरत व्यक्ति होता है ना वो बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन बहुत सारे खूबसूरत व्यक्तियों में जो ज्ञान वाला व्यक्ति है, द वन हु हैज नॉलेज, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अमंग द ब्यूटिफुल, अमंग द कॉमन मासेस, द ब्यूटिफुल पर्सन इज अट्रैक्टिव। अमंग द ब्यूटिफुल द वन हु इज नॉलेजेबल इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड अमंग दोज हु आर नॉलेजेबल द वन हु हैज कैरेक्टर ही इज इवन मोर अट्रैक्टिव, एंड अमंग दोज हु हैव कैरेक्टर द वन हु हैज डिवोशन ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव। सबसे ज्यादा आकर्षक तो वो व्यक्ति जिसके पास भक्ति है वास्तव में सबसे ज्यादा आकर्षक है। तो वैसे देखा जाए सोशल स्टेटस वाले कई लोग हैं, लेकिन जिसके पास आचरण होता है, जिसके पास चरित्र होता है, लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे कई डिवोटीज होंगे जो यहां काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, भले ही कोई बाहर से उनका मजाक उड़ाए लेकिन कुछ समय बाद वो उसकी इज्जत करते हैं। भाई हम यार कोई तो तमीजल आदमी है, कोई तो ऐसा आदमी जो कोई प्रिंसिपल फॉलो करता है, हम लोग डब्बा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये आगे भाई प्यार लहसुन नहीं खाता, ठीक है सिगरेट नहीं पीता, लड़कीबाजी नहीं करता, मूवी नहीं देखने जाता, कमाल हो गया यार, और फिर भी जी रहा है, जिंदा है भाई, कमाल हो गया। सो बहुत तो अंदर से बहुत इज्जत है अष्टी भक्तों की, भले ही बाहर से बोले और जी पंडित जी हरे कृष्णा हमारा भी हाथ देख लो बता दो, लेकिन अंदर से बहुत इज्जत करते हैं डिवोटीज की। So the one who has devotion, he may be lower in status, लेकिन वैसे उसकी बहुत इज्जत होती है। तो social status point of view से भी देखें, when I was working, जब मैं काम करता था बाहर, तो मेरे बॉस का बॉस जो कह के पुकारता था मैं यहां से बोल नहीं सकता, लेकिन उसने मेरे को हमेशा सर करके पुकारा। Even though he was my boss का बॉस, he would always say, आशीष सर एक मिनट आएंगे जरा, प्लीज आयो जरा, कष्ट उठा लो जरा, सर अभी आए सर अभी आए सर, बट ही वुड कॉल मी सर बिकॉज डिवोटीज आर रिस्पेक्टेड। तो सोशल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल स्टेटस किसी को श्रेष्ठ भक्त नहीं बनाती। रामानंद राय परमहंस वैष्णव एक्सटर्नली स्पीकिंग कास्ट फैमिली, सो सोशल स्टेटस नॉट एट ऑल। लाइक हरिदास ठाकुर वॉज गिवन द फर्स्ट ऑफरिंग बाय अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य ने पहली ऑफरिंग जो है श्राद्ध किसको दी? हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर एक्सटर्नली स्पीकिंग मोहम्मदन फैमिली, ठीक है, सोशल स्टेटस यहां पर सोशल स्टेटस कंसिडरेशन नहीं आता। ये तो परम हम सब वैष्णव नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इवाचल भक्ति सांसद ठाकुर जब लेक्चर दे रहे थे तो एक डोनेशन देने वाला व्यक्ति था, जो डोनर था वो क्या कर रहा सबसे आगे बैठने जाता था लेकिन लेट आए भाई साहब, तो भक्तों के बीच में कूदते फांदते किसी की जांघ के ऊपर लांगते हुए, किसी कंधे से ऊपर लांगते हुए आगे आना चाहते, भक्त से महाराज ने उसको वहीं रोक दिया। महाराज ने कहा रुक जाओ, तुमको क्या लगता है तुम्हारी ये 2 रुपए की मंथली डोनेशन से तुमने मुझको खरीद दिया क्या? जहां हो ना वहीं बैठ जाओ। और सर प्रभुपाद जी आगे बैठे हुए थे तो अभी डांट तक सिलसिले चला तो उनको भी डांट पड़ी प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने कहा और तुम कब तक वहां बैठे रहोगे, तुम क्यों नहीं यहां पर आके बोलते? तो ये स्नेह वाली डांट थी, और उसको दसवीं डांट पड़ी वो जो अपने आपको समझता था कि मैं तो 2 रुपए हर महीने डोनेशन देता। सो सोशल स्टेटस से भी कोई डिवोटी नहीं बनता। और किससे बनता होगा? नंबर ऑफ फॉलोअर्स, किसके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। कलयुग में तो ये बहुत ही बिल्डरिंग है। मंगोलिया की 40% पॉपुलेशन ने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया हुआ है, 40% पॉपुलेशन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया हुआ है। तो अगर फॉलोइंग देखें तो अरे भारत तो ऐसी ऐसी फॉलोइंग है, मतलब कुछ भी करने वाले, त्रिशूल रखने वाले, अपना नाम राधे मां बताने वाले, अरे ह्यूज फॉलोइंग है, एक्चुअली ह्यूज फॉलोइंग। यहां पर नाम ले रहा हूं, बाहर नहीं लेता वैसे ना, सिर्फ अपने घर परिवार में तो ले सकते हैं, दिस इज आवर फैमिली। सो द पॉइंट इज दैट कि बाहर हम देखें ऐसे लोग आते हैं, दे हैव ह्यूज ह्यूज फॉलोइंग। और भागवतों में तो लिखा है कि कलयुग में हंसों के समाज छोटे होंगे, कौओं के समाज बड़े होंगे। तो अगर हम फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई भक्तों के बारे में बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है दैट पर्सन इज अ ग्रेट डिवोटी, द पर्सन हु हैज नो फॉलोइंग वो तो बेचारा छोटा मोटा डिवोटी। सो इट इज नॉट बाय नंबर ऑफ फॉलोइंग। नॉलेज, किसी बात ज्यादा नॉलेज है इसलिए बहुत बड़ा डिवोटी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मायावादी हैं, उनकी नॉलेज हमारे से बहुत ज्यादा है। अरे ग्रामर में घुस घुस के पता नहीं कहां का घुस गए वो, अब निकल ही नहीं पाते वहां से, बहुत नॉलेज है पर क्या उससे पता लगता है। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक बार कुछ आए थे, पंडित लोग आए थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा यू आर सच अ स्कॉलर, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर्स। कहा स्वामी जी ये तो इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, ये थोड़ी है अब ये कोई अभी चर्चा करने की बात थोड़ी, इतने सारे कंक्लूजन है, कंक्लूजन ही कंक्लूजन है, कंक्लूजन ही कंक्लूजन। तो फिर प्रभुपाद जी ने जो है वो सरस्वती, 5 साल की बेटी है छोटी सी बच्ची, सो बोला सरस्वती कम हियर। सरस्वती पूछा सरस्वती सो हु इज गॉड, और फिर सरस्वती ने जो है 5 साल की बच्ची तोतरी भाषा बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस 5-year-old सरस्वती कैन बिकम गुरु ऑफ दी सो कॉल्ड पंडित्स। ये पंडित है लेकिन इनको कंक्लूजन नहीं पता, बट दिस गर्ल नोस। तो ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए नॉलेज किसी, अरे किसी के पास 5 TB डेटा है, किसी के पास 10 TB डेटा है, अरे हार्ड डिस्क भरी हुई है भैया, ऐसे बहुत सारा डेटा है, सर्च मारो इतनी फाइल निकल आती है, बहुत डेटा है। लेकिन डेटा का क्या करेंगे, डेटा का क्या करेंगे, डेटा तो रिसाइकल बिन में भी होता है कंप्यूटर के, क्या कर लेंगे उसको, अरे रेस्टोर तो कर भाई उसे, जब तक वो रिसाइकल बिन में पड़ा रहेगा डेटा है वो तो। सो नॉलेज से भी जो है किसी का पता लगता कि व्यक्ति जो है कितना भक्त है या कितना भाग्यशाली है। कोई बहुत तपस्या करे तो तपस्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मतलब हरे कृष्ण डिवोटीज तो मतलब कहीं काउंट ही नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया में सब कई लोग तपस्या कर रहे हैं, योगी लोग, ध्यानी लोग, कर्मी लोग, सब तपस्या करते हैं। एक क्लास ऐसी है जो कि तपस्या नहीं करती या तपस्या करने में कमजोर है, और वो है भगत लोग। वो कौन है, तपस्या हमको भी करनी चाहिए ऑफकोर्स, हमको तो जितनी तपस्या करनी चाहिए सबसे ज्यादा तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि हमारा गोल सबसे हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है, तो इससे सबसे ज्यादा कीमत हमें चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दैट मीन्स तपस्या तो हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन अगर तपस्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, करंट भी अगर हम देखें, तो भक्त लोग हैव गुड टाइम है, सुबह उठना, नाचना, गाना, जप करना, थोड़ा झपक मारना, क्लास में आना, स्टोरी सुनना, प्रसाद, टाइम गुड, क्या बात है, वाह। एकादशी दिन वो फास्ट नहीं है, फीस जाओ तो। सो तपस्या पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी का पता नहीं चलता। और इससे पता लगा रेगुलरिटी इन साधना, अब ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी है भाई, रेगुलरिटी इन साधना से। कुछ ऐसे हैं भाई साहब पिछले 25 साल से एक मंगल आरती मिस नहीं की, रिकॉर्ड। अफकोर्स यही तो अब जिसमें अभी भी कह सकते हैं अफकोर्स बहुत ही घना आकर्षण है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है समवन इज वेरी ड्यूटीफुल इन हिज एक्शंस, ड्यूटीफुल, ठीक है, एंड दोज हु आर ड्यूटीफुल अफकोर्स दे आर ब्यूटीफुल, बट सिर्फ ड्यूटीफुल है एक्चुअली, कृष्ण के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं है, लेकिन क्योंकि घर परिवार में बड़ा सात्विकता रही है, सो सच पीपल आर वेरी ड्यूटीफुल। तो सिर्फ ड्यूटी में जो है होता बड़ा रेगुलर हो, तो एक्सटर्नली स्पीकिंग अंदर से आकर्षण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कांट से, लेकिन समवन कैन बी रेगुलर, रेगुलरिटी इन साधना। दे कैन बी अ डिवोटी जो कि किसी हेल्थ रीजन से नहीं आ पाता, But internally he is thinking कि वो कब दिन आएगा जब मंगल आरती रेगुलरली जाऊंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं ध्यान पूर्वक भक्तों के साथ बैठ के जप करूंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं रुक्मिणी कृष्ण रूप को सामने देखते हुए मैं जप करूंगा, कब वो दिन आएगा। और वो जो है अपना रूम में बैठ के विरह में है बेचारा, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। और एक है जो यहाँ रेगुलर याद करते हैं, फिर आगे वो पकाओ समय यार सुबह, अभी इतना सर्दी का समय होता है कंबल छोड़ना पड़ता है। दे वॉन्ट अस टू बिकम हम्बल एंड गिव अप कंबल। फंस गए यार बिना आगे, पहले जिंदगी कितनी अच्छी थी, अपना कोका कोला पीता था, टीवी देखता था, अभी सब खत्म हो गया है। सो एक्सटर्नली स्पीकिंग ही इज देयर, एक्सटर्नली स्पीकिंग वो बेचारा कहां बैठा है, ऊपर कमरे में नहीं आ पा रहा वो। सो दैट मींस एक्सटर्नली देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, रेगुलरिटी और साधना से भी किसी को स्क्रूटिनाइज करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आश्रम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आश्रम तो ये बड़ा मुश्किल है। वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके गए अपने भक्त के यहां पर कि भाई भक्तों में भी कितना आकर्षण है कृष्ण के प्रति। कृष्ण भगवान ही इज वेरी ट्रिकी गॉड, यह करते हैं एक भक्त का इस्तेमाल करते हैं दूसरे भक्त की प्राइड को काटने के लिए, फिर इस भक्त का इस्तेमाल करेंगे उस भक्त की प्राइड काटने में, तो सबको जो है बड़ा बैलेंस करके रखते हैं भगवान। जिस तरह से एक बार अर्जुन को लेके गए मयूर ध्वज के साम्राज्य में, तो उन्होंने कहा ये जो है मेरा भक्त है जो यहां राज करते हैं ना। कहता अच्छा अर्जुन हो जाए लेकिन होगा, अच्छा भक्त होगा हो नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण को अभी अपनी दिखाना था कि उस भक्ति कितनी ग्लोरीज है। तो भगवान कृष्ण का कि ना चलो इसके साम्राज्य में जाकर चलते हैं, और साम्राज्य में जाकर ना अभी एक न्यूली मैरिड कपल है ठीक है, तो आज उनकी पहली रात है, तो उनके बाहर जो कमरे का जो दरवाजा है ना उसका जो होल है उसमें से ना अंदर झांक के देखते हैं। कहते हैं अरे भगवान ये आप क्या बोल रहे आज, किसी का समर हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, पहली रात अब सुहाग रात है, वो क्या करेगा, वो आप चारों में देखूं उसको और सुनूं भी दोनों बातें क्या कर रहे हैं आपस में, देखा वल्गर टॉक्स क्या आप कृष्ण। तो फिर यह कृष्णा कहना माली और अर्जुन वास नाउ हियरिंग, आप सुन रहे हैं, तो अंदर की आवाज आई, हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे, तो जो वाइफ है उसकी आंखें झुकी हुई हैं और हस्बैंड जो है सामने है, तो हस्बैंड ने ना उससे उसका जो टोटी है पकड़ के ऊपर की और कहा कि देखो तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी खूबसूरती कृष्ण की सुंदरता के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारी सुंदरता कुछ भी नहीं है कृष्ण में, कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। तो फिर जो वाइफ थी उसने बोला मैं भी एक बात कहूं, देखो वैसे तो पत्नी की आंखों में सिर्फ पति ही होने चाहिए, लेकिन ना मेरी आंखों में सिर्फ कृष्ण ही है, तो आप बुरा मत मानना। तो पति ने कहा अच्छा तुम्हारी आंखों में सिर्फ कृष्ण ही है, तो मुझे कृष्ण का दर्शन कराओ ना। तो फिर जो है धीरे धीरे करके आप उसने आंखें खोली, तो वाइफ की आंखों में सिर्फ कृष्ण की तस्वीर थी, उसके पति की छवि नहीं थी। तो उसके पति ने कहा बस अब ऐसे ही रहना, मुझको दर्शन करने दो कृष्ण के, और इस तरह से जो उन्होंने पूरी रात बिता दी। दिस वॉज द फर्स्ट नाइट। और ये मयूर ध्वज के किंगडम में एक ऑर्डिनरी सिटीजन की भक्ति का हाल है, तो राजा का क्या हाल होगा। अर्जुन ने कहा भाई मान गए भगवान आपके भक्तों का तो क्या कहना, कमाल डिवोटीज है आपके। सो दैट वेज वी सी अगर गृहस्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी गृहस्थ मैनी ग्रेट गृहस्थ डिवोटीज, मैनी ग्रेट गृहस्थ डिवोटीज। भाई प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे तो गर्गमुनि प्रभु, तो उनकी तो ही वास प्रभुपाद प्लीज गिव मी संन्यास, आई वॉन्ट संन्यास। प्रभुपाद जी ने कहा बट यू शुड हैव परमिशन फ्रॉम योर वाइफ, क्या तुम्हें परमिशन है तुम्हारी वाइफ की। प्रभुपाद उसका परमिशन का क्या, उसकी परमिशन इतनी जरूरी नहीं है, आप बस मुझको संन्यास दो। प्रभुपाद नहीं नहीं बस शी इज अ डिवोटी, यू शुड टेक हर परमिशन। तो उनकी वाइफ को लेके आए, तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा सो योर हस्बैंड वॉन्ट्स टू टेक संन्यास, सो वट इज योर ओपिनियन, क्या चाहती हो तुम। तो उनकी वाइफ ने कहा प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा देखो संन्यास लेना चाहता है तो तुम अलाउ कर सकती हो, वैसे यू कैन गिव हर परमिशन। तो वाइफ ने कहा प्रभुपाद फॉर यू एनीथिंग, ये चाहिए भैया। क्या डिवोटीज है प्रभुपाद जी की, क्या डिसाइपल्स है प्रभुपाद जी का, अमेजिंग अमेजिंग. सो दैट इज इवन इन गृहस्थ आश्रम समन कैन बी सच अ ग्लोरियस वैष्णव लाइक तेजस प्रभु. जब तेजस प्रभु जिनको यहां दिल्ली भेजा था प्रभुपाद जी ने, तो उनको भेजा प्रभुपाद आई वॉन्ट संन्यास, आई वॉन्ट टू नो डिवोर्स. प्रभुपाद जी ने कहा नो नो यू शुड नो वाई यू वॉन्ट टू टेक संन्यास. नो प्रभुपाद एक्चुअली आई विल प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस. प्रभुपाद ने कहा बट यू कैन प्रीच इन गृहस्थ आश्रम ऑल्सो, तुम प्रीचिंग कर सकते हो, क्या दिक्कत है. प्रभुपाद एक्चुअली क्या है ना, मेरे को वाइफ से बहुत दिक्कत है, झगड़ा करती है, बहुत शिकायतें करती है, मेरे को कंपेयर करती है दूसरों के साथ, मुझे दुख होता है मेरे को, इसलिए मैं सोचा संन्यास नहीं लेता हूं मैं. प्रभुपाद ने कहा शी इज अ डिवोटी, वो तो इतना अच्छा हारमोनियम बजाती है, इतना अच्छा मृदंग बजाती है, इतना अच्छा कीर्तन करती है और साधना भी उसकी अच्छी है, तुमको अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए. तो तेजस प्रभु तुरंत समझ गए कि एक्चुअली संन्यास लेने की भावना उनकी ठीक नहीं थी. He just he wanted to avoid a troublesome situation. Or he was not ready to mold himself in grihastha ashram. So isliye jo hai to Prabhupada ji ne emphasize kiya ki even in grihastha ashram also one can be, you know, one can go back home back to Godhead. Aur yahan par ek itna sundar udharan hai Pandavon ka. Aur Pandavon mein vishesh rup se Arjun jo hai bhagwan ko bahut priya hai. Ek baar Arjun Dwarka gaye the. To Dwarka mein जब उनको इन्वाइट किया गया तो उनको वो विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करके उनको उठना था और फिर प्रसाद के लिए आना था. तो फिर भगवान कृष्ण ने अपनी रानी को भेजा कि जाओ बुला के लेके आओ अर्जुन को. तो वो अंदर गई, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, रानी आई नहीं. अरे वो तो पता नहीं वो आए नहीं, ऐसा करो तुम जाओ. दूसरी गई, वो भी नहीं आई. तीसरी गई, वो भी नहीं आई. कहीं सारे चली गई, अरे वो आई नहीं. अरे अर्जुन को बुलाने भेजना कोई आई नहीं, तो क्या है. फिर फाइनली जो है रुक्मिणी जी को भेजा, रुक्मिणी गई, वो भी नहीं है. अरे जिसको भेजो, अरे यही तो मैं इसलिए भेज रहा हूं कि अर्जुन को बुला के लेके आओ, और अर्जुन को लेके नहीं आ रही. तो फिर भगवान कृष्ण अंदर गए, तो अंदर देखा अर्जुन जो है बिस्तर पे लेटे हुए हैं और उनके मुख से जो है कृष्ण का नाम निकल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और उसके बाद क्या है, जितनी भी रानियां हैं वो उनके मुख से निकलने वाले शुद्ध नाम में स्तब्ध हो गई. शुद्ध नाम सुन रही है अर्जुन के मुख से, सोते वक्त भगवान का नाम निकल रहा है. हम लोग नाम लेते हुए सो जाते हैं और वो सोते हुए नाम ले रहे हैं. जस्ट सी द ग्लोरीज ऑफ अर्जुन. हमारे तो सुपर एक्टिव होते, ऐसे आंख खुलती है, नहाते धोते फर्राट कराते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे बैठे जैसे हाथ डाले, मैजिकल मैजिकल कमाल है, मतलब कमाल की स्थिति. इससे एक्चुअली मेरी पर्सनली मेरा रियलाइजेशन है, मेरी हरिनाम में बहुत श्रद्धा बढ़ी थी. ये तो कुछ कमाल है एक्चुअली, मतलब ठीक है मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिला मुझे अभी तक बात आ रही, लेकिन ये कि एक कुछ खास तो है इसके अंदर कि बंदा सुपर एक्टिव आता है उसके बाद चित्त हो जाता है. यानी कि एक कुछ इतनी ऊंची चीज है जिसको छू पाने में अभी हमारा दम नहीं है अभी. तो यहां अर्जुन की ग्लोरी से, तो उसके बाद सबके सब स्तब्ध है, जितनी भी रानियां हैं द्वारका की तो स्तब्ध रही जस्ट बाय हियरिंग द शुद्ध नाम कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ अर्जुन. अर्जुन के मुख से निकलने वाला शुद्ध नाम स्तब्ध, और उनके मुख से भी निकल रहा है. एंड दिस वाज हरिनाम संकीर्तन. ये हरिनाम संकीर्तन, सबके सब शुद्ध नाम ले रहे हैं. दिस वाज हरिनाम संकीर्तन. सो कृष्ण वाज हैप्पी दैट डिवोटीज आर डूइंग हरिनाम संकीर्तन. अर्जुन लेटे लेटे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ही इज द मेन सिंगर, और बाकी सब फॉलो कर रहे हैं. आपको ध्यान ऐसा नहीं हो पाएगा, ग्लोरियस एक्चुअली. अर्जुन जो है, तो पांडव जो है बहुत बहुत प्रिय है वास्तव में. और अफकोर्स एक एक सवाल आ सकता है किसी के मन में, अगर किसी ने महाभारत कहीं ने पढ़ी होगी तो उसमें अफकोर्स महाभारत है ना, बाहर कुछ पब्लिकेशंस हैं पर सारी पब्लिकेशंस ऑथेंटिक नहीं है. जैसे एक देवदत्त पटनायक नाम का आदमी है, बदमाश नंबर वन है एकदम, ठीक है. इसने महाभारत लिखी हुई है, इसकी महाभारत का नाम है जय जय महाभारत, पूरा पराजय करके रखा हुआ है. सो ही हैज कंक्लूडेड इन द महाभारत कि आखिर में हुआ क्या, जो कौरव थे वो स्वर्ग चले गए और जो पांडव थे वो नर्क चले गए. ये पांडव जो इतने महान भक्त हैं ये नर्क चले गए. एंड दिस इज हाउ ही हैज कंक्लूडेड, भाई ये कंक्लूजन है, पांडव गए नर्क, कौरव गए स्वर्ग. थैंक यू वेरी मच. अभी शुभिलास प्रभु की जो बुक निकली द राइज ऑफ द सन प्रिंस और उसके बाद शैटर्ड ड्रीम्स, तो ही सेड कि मैंने एक मैंने इसलिए भी लिखी है वो कि बिकॉज सच रास्कल्स आर प्रिंटिंग बुक्स ऑन द लॉर्ड. सो ही हैज कंक्लूडेड कि भाई पांडव जो है वो नर्क गए और जो कौरव थे वो स्वर्ग गए. तो आखिर बात आती है, तो हुआ तो वही स्वर्गारोहण के वहां जब जा रहे थे तो फिर धीरे धीरे सबका पतन हुआ। नकुल का इसलिए पतन हुआ क्योंकि नकुल को जो अपनी बुद्धि में बड़ा घमंड था। सहदेव का इसलिए पतन हुआ क्योंकि सहदेव वाज वेरी हैंडसम गुड लुकिंग। उसका अर्जुन का पतन हुआ क्योंकि उनको धनुष बाण चलाने का बड़ा घमंड था। भीम का पतन हुआ क्योंकि उनको बल अपना बल का बड़ा घमंड था। और फिर फाइनली सिर्फ युधिष्ठिर महाराज एक कुत्ते के साथ बस वही प्रवेश कर पाए थे स्वर्ग में। तो स्वर्ग में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कौरव है वहां, सब खुश हो रहे अरे वो खुश है बात। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे कि मतलब ये कौरव जो है यहां पर कैसे। तो उनको फिर बताया गया कि यहां पर इसलिए है क्योंकि युद्ध में जो मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इसलिए कि युद्ध में लड़ते लड़ते मरे थे इसलिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और मेरे भाई कहते हैं आपके भाई घमंड था तो मेरे भाई सारे कहां हैं, सबके सब नर्क में, तो मैं नर्क में जाना चाहता हूं। तो नर्क में गए, नर्क में वहां पर देखने वहां पर अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबके सब प्रताड़ित हैं दुखी हैं ये बेचारे यहां पर। तो सब कह रहे हैं अरे भ्राताश्री दुष्टिर भ्राताश्री हमें बचा लो, अरे आप सब यहां पर हो। कहते हैं हाँ हम क्या करें यहां नर्क में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं भी फिर यहीं पे रहूंगा, अगर मेरे भाई जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया क्योंकि वो नर्क में तो मैं भी नर्क में रहूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने जब इस तरह की लॉयल्टी दिखाई और उन्होंने कहा चिंता मत करो हम यहां पर कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप चिंता मत करो हम यहीं पर रहेंगे, तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ यहां नर्क में रहूंगा। तभी जो है जितना भी नर्क का नजारा था एकदम डिसअपीयर हो गया, वो वहां सारा नर्क का नजारा डिसअपीयर हो गया। और फिर वहां पर पांडव भी हैं और वहां युधिष्ठिर महाराज भी हैं, चार जो पांडव थे द्रौपदी साथ में युधिष्ठिर महाराज और सारे डेमीगॉड्स भी आए, इंद्र भी आए और साथ में भगवान वासुदेव के रूप में है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तब इंद्र ने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपको याद है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो फिर उस वक्त भगवान कृष्ण ने आपसे कहा था झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, और आपने कहा था नहीं हम तो सत्य बोलने वाले हम तो सच बोलेंगे। और इससे पहले इस इंसिडेंट से पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर महाराज जब चलते थे तो जमीन के ऊपर चलते थे, उनका पांव कभी जमीन को नहीं छूता था और जो उनका रथ भी था वो भी जमीन को नहीं छूता था, वो भी हवा में चलता था लिटिल 2-3 इंच ऊपर, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने धर्म का पालन किया इसलिए वो कभी भी धरती को उनका पैया छुआ नहीं। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने सच बोला तब उनका रथ का पैया छू गया, जब उन्होंने सच बोला। तो उस वक्त इंद्र ने उन्हें एक्सप्लेन किया जब परम सत्य आपसे कुछ कह रहे थे कुछ, उस वक्त जो है आपने उनका कहना ना मानते हुए आपने सच बोला था, इसीलिए वो सच जो है झूठ काउंट हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ टोल्ड यू टू लाई एंड दैट्स व्हाई दैट लाई वाज अबव द ट्रूथ बट यू स्पोक द ट्रूथ व्हिच वाज बीनीथ लाई बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रूथ टोल्ड यू टू लाई, इसीलिए आपका पहिया छू गया था और उसी वजह से आपको जो है नर्क से दर्शन करने पड़े। आपके भाई कभी भी नर्क में नहीं गए लेकिन ऐसा आपको देखना पड़ा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त आपने ऐसा किया था। लेकिन इसमें भी जो है टीचिंग्स हैं वास्तव में, पांडवों के द्वारा टीचिंग्स हैं कि अगर भगवान की सेवा में सच और झूठ की बात आए तो वो चीज जो कृष्ण भावना के अनुकूल है वो करनी चाहिए। फॉर अ हायर प्रिंसिपल वी कैन ब्रेक द लोअर प्रिंसिपल, सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द टॉप मोस्ट प्रिंसिपल वास्तव में। तो इसीलिए जो है उनको नर्क के सिर्फ दर्शन हुए थे, नर्क कोई नहीं गया, पांडवों से कोई नर्क नहीं गया। ये तो भगवान को इतने प्रिय हैं कि इनके यहां पर ऐसे संतजन आते हैं जो कि दूसरी जगहों पवित्र करने वाले हैं, वो इनके यहां पर आके दर्शन करते हैं, तो इसीलिए इनका स्थान तो बहुत ही ऊंचा है पांडवों का स्थान। ओके, तो इस प्रकार से और भी कहीं लीला है वास्तव में, तो हम यहीं पर विराम देंगे। किसी को प्रश्न है, हरे कृष्ण, किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, टिप्पणी रुकमणी यस प्रेमानंद प्रभु महाराज यस महाराज
You were saying that there's not much tapasya for householders, but there are certain tapasya that must be carried out especially by initiated householders.
Yes, Maharaj, certainly.
So, first of all, let him translate.
Okay, yes, Maharaj.
तो महाराज कह रहे हैं कि आपने बताया कि जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए बहुत तपस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, गृहस्थ भक्तों के लिए खासकर जो कि दीक्षित हैं उनके लिए बहुत विशेष तपस्या है।
For example, the upgrade, even in this zone, I'm being very frank.
Yes, ma'am.
And that's my duty as a sannyasi, or the stick is useless. I must be very truthful.
Yes, Maharaj.
महाराज कह रहे हैं मेरा सन्यासी होने का धर्म है इसलिए मैं कैसे सत्य बोल रहा हूँ जो थोड़ा कठोर हो सकता है.
Even in this zone, the householders must upgrade. There must be tapasya in household life. Must be. It's not a free ride. There must be tapasya in household life. But not like a yogi, not like a jagi, not that kind.
तो महाराज कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी जो दीक्षित गृहस्थ भक्त हैं उनको अपनी स्थिति थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी, उनको भी तपस्या करनी पड़ेगी. इतना आसान नहीं है. हालांकि उनको एक योगी और त्यागी नहीं बनना है लेकिन फिर भी उनको कुछ तपस्या करनी पड़ेगी.
माई रिक्वेस्ट फॉर दिस जोन नाउ वी टॉकिंग अबाउट दोज इनिशिएटेड प्राइमरीली बाय हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, यू नो that the what is the to understand what is the duty of a grihastha disciple, even though we have so many wonderful thousands of grihastha or married devotees who doing wonderful service like during the marathon now, for example. Still there must be more upgrade, must be more upgrade.
मैं खासकर वो जो दीक्षित गृहस्थ भक्त हैं जो कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं और जो इस क्षेत्र में हैं, हालांकि ऐसे कई हजारों हैं भक्त जो कि बहुत अच्छे हैं, मैराथन में बहुत अच्छी सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी स्थिति थोड़ी अच्छी करनी चाहिए.
Then what is that tapasya, you know? What is that tapasya to make the difference between grihamedi and grihastra? What is that? Otherwise, after initiation, may Pune Mustika Baba, you know, become again a mouse. This is going on, you know, unfortunately. Never get out of the mouse category even after taking initiation.
तो दीक्षा के बाद उनको ये समझना चाहिए कि गृहस्थ और गृहमेदी में क्या अंतर है, नहीं तो फिर से पुनर्मुस्तको बाबा, ये समझना उनको बहुत आवश्यक है.
It boils down to if somebody takes initiation, especially those who are initiated, and especially those who aspire for initiation but are married, they must change their lifestyle. But they're not going far enough. Only chota, little change, nothing much, not much change of lifestyle, so that it's just a free ride initiation, just a free ride. Maybe they were already following regulated principles, fine. They put their hand in a bead bag, fine. They chant 16 rounds, fine. What kind of rounds are chanting?
तो खासकर जो दीक्षित भक्त हैं या जो दीक्षा के लिए aspire कर रहे हैं उनको जरूर से नियमों का पालन करना चाहिए अच्छे से. दीक्षा का मतलब ऐसा नहीं है, उनको बहुत दृढ़ता पूर्वक सारे नियमों का पालन करना चाहिए. माला तो करते हैं लेकिन पता नहीं किस प्रकार की माला करते हैं.
Don't get me wrong, I know there are many, many hundreds of sincere devotees in household ashram in this zone. I don't mean to be excessively critical, but nevertheless, the reality check is there must be an upgrade in lifestyle.
तो आप मुझे गलत मत समझिए, ऐसे बहुत सारे बहुत ही विशेष भक्त भी हैं जो बहुत विशेष विशेष सेवाएं करते हैं, तो आप मुझे गलत मत समझिए लेकिन हमें अपने जीवन के शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा.
Especially initiated devotees and aspiring devotees who aspire after initiation, there is a small move in America, kill your television.
खासकर जो दीक्षित भक्त हैं या जो दीक्षा पाना चाहते हैं उनको तो जरूर से तैयार रहना चाहिए. अमेरिका में ऐसा कहते हैं कि kill the television.
They take initiation but they go on watching television. Why? What has this got to do with their spiritual life? And what was the meaning of their initiation? They go on watching television. But what is television?
दीक्षा के बाद भी वो टीवी देखते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. टीवी देखने की क्या जरूरत है?
Television means enjoying watching other people's sinful life. Maybe you don't have sinful life, but you're enjoying watching other people's illicit sex. You're enjoying watching other people's meat eating, other people's cigarette smoking, other people's wine drinking. Yes. Well, what, how is that supposed to help your spiritual life? It's very damaging. It's damning to your spiritual life. Absolutely damning. This upgrade must be made in this zone. Absolutely. It's not just enough to do some work for the movement, but upgrade a personal life. That is required. That is the posture. To make the difference between Grihastha and Grihamani, television has to go.
Yes.
So, Maharaj says that this is the tapasya. If you have a Grihastha and a Grihamedi, then you have to leave the TV. To leave the TV means that you have to watch other people's paap-purn karyon ko dekhna. वो कैसे नियमों का पालन नहीं करते और उसको देख के खुश होना तो ये बिल्कुल ही गलत है.
The man says, well, I work hard, you know, and I come home, I want to sit down and just relax. I don't know, I don't watch cinema on the television, I just want to watch the news.
जो पुरुष है वो घर पे आते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे टीवी देखना है, मैं सिनेमा नहीं देखना चाहता बस लेकिन समाचार देखना चाहता हूँ केवल.
Yeah, well, they're watching the news and they, what are they seeing? All the corrupt politics in India, this corrupt politician, that corrupt. And by watching the news, they become convinced I am Indian. They don't become convinced I'm not this body, they become I am Indian. Oh, this Indian politician, and that he's doing this, and this Indian, and that Indian cinema star, and this Indian, that, and I'm also Indian. What is this nonsense? What is this nonsense? Even what he thinks it's clean because I'm just watching the news. Yeah, so you can become more and more think that you're Indian. I don't watch the news. I'm doing okay.
Maharaj कह रहे कि हम समाचार देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो कि बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, करप्शन करते हैं, तो टीवी देखने से हम अपने आप को भारतीय समझते हैं और शरीर के स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम जितना ज्यादा समाचार देखते हैं अपने आप को इन राजनीतिज्ञों से और भारत से अपने आप को पहचान करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है.
There are exceptions, like, you know, if there's a national disaster, terrorist attack, or, you know, then it's good to know what's going on, the floods, you know, then, you know, there's something going on. Devotees should have some idea of what's going on, but not to become a news addict in such a way saying, I am Indian. I get to sit here honestly and tell you, in front of the news, I don't think I'm American, you know. And I occasionally hear a little news about America, and most of the time it's rather contaminating. If I hear too much news, like about American politics, election next year, and all this rubbish, you know, then it will drag me back into bodily consciousness, you know. So the point is that even news watching is not such an innocent thing, because it fortifies bodily concepts of life.
आज कह रहे हैं कि हालांकि समाचार देखना कई बार उसका जानकारी होना चाहिए भक्तों को भी कि बाहर क्या चल रहा है, कई बार कुछ प्राकृतिक संपदाएं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जो है वो शारीरिक स्तर पे लेके आता है, तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए. वो
अदर तपस्या फॉर हाउसहोल्ड लाइफ, देयर सेवरल तपस्यास, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू आउटलाइन और गिव अ होल अदर लेक्चर, बट द पॉइंट इज दैट one of the tapasyas for household life is how the children are raised. What way of life, how are they raised? You know, just like, you know, when I was giving the class, I had to scold and scold and scold and drive the children out because they're not trained how to behave. That's the tapasya, training the children how to behave like decent human beings. That's called the tapasya. It's inconvenient. Inconvenient. You know, because they don't have manners anymore. You're having some conversation with another person, and they just come and make their sense gratification demands.
तो गृहस्थ भक्तों के लिए एक और विशेष तपस्या है कि कैसे वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं. ये बहुत आवश्यक है. महाराज बता रहे थे कि एक कक्षा में वो थे, उनको बहुत ही डांटना पड़ा, और उस समय तक डांटना पड़ा जब तक वो बच्चे बाहर नहीं चले गए, क्योंकि वो बहुत ही परेशान करते हैं. तो ये गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत बड़ी तपस्या है कि कैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं.
Supposing I'm having a conversation with this Prabhu here, and we're discussing some kind of devotional service, Hare Krishna or something, you know.
तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये भक्त हैं, इनके साथ मैं कुछ हरि कथा चर्चा कर रहा हूँ.
My little monkey boy comes up.
अरे छोटा बच्चा आता है.
They're monkeys, you know.
वे बंदर के समान होते हैं.
I mean, you know, they like Krishna, but they're monkeys. Monkeys like Krishna also.
लेकिन वो कृष्ण को पसंद करते हैं, लेकिन वो बंदर की तरह हैं. वैसे कृष्ण को भी बंदर पसंद है.
So I'm talking with him when we're having some discussion, you know.
तो जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं.
My monkey boy comes up. Hey, give me the phone. Come on. No, please. You know, no, please, Dad, excuse me, Dad, can I have some money to buy, I want to buy a soft drink, a 7-Up, you know. That's dead, it's finished, you know. Dad! Thanks. No thanks either. No thanks, you know. Okay. And run off, no permission, no nothing, just go off, gratify the senses, you know. Or the mobile phone, they don't say please, they don't say excuse me. All these things are finished. So the tapasya is... the tapasya is training children instead of letting little girls...
So Maharaj, Sadharan se dikha rahe the ki kaise jo bachche hain wo sab bhool gaye hain kisi tarah ka please, excuse me, sorry, thank you, kuch aisa nahi. Wo seedha aate hain, leke chale jaate hain. To ye tapasya hai, hame unko is tarike se sikhana hai.
Look at the clothing the children, look at the clothing that the so-called Grihastha put their children in. The clothing they put their children in.
Agar hum dekhe ki ye bachche kaise kaise kapde pehante hain, to ye bhi bada aashcharyajanak hai.
Little girls in blue jeans and mini skirts.
छोटे छोटे बच्चे हैं वो जीन्स और छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनते हैं.
Nice family, nice kids. Well, what are they? What lifestyle are they training their children in?
हालांकि वो बच्चे अच्छे हैं और अच्छे परिवार से भी हैं, लेकिन ये किस तरह का जीवन शैली सिखा रहे हैं उनको?
Mickey Mouse T-shirt. How is that going to help your daughter become Krishna conscious, wearing a Mickey Mouse t-shirt and a mini skirt? How is that going to help her? And they're nice people, don't get me wrong. Well, how is this going to help the child become Krishna conscious with a mini skirt and a Mickey Mouse t-shirt? You've seen. Everybody has seen. But everybody remains silent. Nobody says anything.
हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो मिकी माउस टी शर्ट पहनते हैं और मिनी स्कर्ट पहनते हैं, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित होंगे?
The boys are wearing always some jacket with some, you know, demoniac saying on the back of it, you know, some t-shirt with some demons, you know, skull and crossbones maybe. The parents buy this rubbish for their kids. Where's the consciousness? This is called the Krishna consciousness movement. That's the tapasya.
तो ये तपस्या है कि कैसे जो बच्चे होते हैं छोटे, वो ऐसे ऐसे टी शर्ट पहन के आते हैं जिसपे की स्कल्स बने होते हैं, हड्डियां बनी होती हैं, तो कैसे वो कृष्ण भावना भावित होंगे? तो ये तपस्या है कि कैसे उनको हम कृष्ण भावना भावित बना सके.
There was one fat guy, I'll just tell this because it's funny. There was one fat guy, rather homely. But he was an older guy, but a fat guy, rather homely.
तो थोड़े समय पहले एक बहुत ही मोटा किस्म का व्यक्ति आया, हालांकि वो थोड़े वृद्ध थे लेकिन बहुत मोटे थे.
He was wearing a black t-shirt and a big gut sticking out and quite homely.
तो वो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था उन्होंने, काले रंग का.
On the back side of his t-shirt had a picture of a woman's hands with the pink, you know, manicured pink on the hand nails, on the fingernails, the pink paint on the fingernails. And that was on the back side of his shirt, like they were coming around from the front side. The hands were coming around from the front side.
तो उनका जो टी शर्ट था उनके पीछे स्त्री के उंगलियां बनी हुई थी, नाखून बने हुए थे और उस पर बहुत ही अलग तरीके का पेंटिंग किया हुआ था.
On the front of the t-shirt it said, "Chicks just can't keep their hands off of me."
और उसके सामने में लिखा हुआ था कि जो स्त्रियां हैं वो अपना हाथ मुझसे दूर रखें.
नहीं रख सकती.
This is pathetic. The guy is homely and fat, and his teacher says, "Chicks just can't keep their hands off of me."
And they want to slap him.
Okay, anyways, that's the deposit for us.
Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you very much. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गोप्रमनंदे हरि हरि.